come close, please, brothers. You'll get so much reward if you listen. One mas'alah, you get the reward of 1,000 nafal rakats. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem, amma ba'd. Sahil ne sawal kiya ke میں بیمار ہوں, 5-6 سال تک روزہ نہیں رکھ سکا. کنٹینیوسلی 5-6 سال میں بیمار رہا, روزہ نہیں رکھ سکا. تو اب میں ٹھیک ہوں, روزہ رکھ سکتا ہوں. آئی کین کی فاسٹ ناؤ. تو کیا میرے لیے قضا ضروری ہے یا قضا اور فدیہ دونوں دینا پڑے گا؟ اور اگر فدیہ ہے تو کتنا فدیہ ہے؟ سوال یہ ہے. ساحل کا سوال کیا ہے کہ کچھ سال میرے روزے چھوٹ گئے اور اس میں بیماری کی وجہ سے تھا. اب میں ان روزوں کی قضا کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے روزوں کی قضا بھی کرنی ہے اور فدیہ بھی دینا ہے, یا اونلی آئی ہیو ٹو میک قضا؟ جواب, رمضان کے بعد, چاہے 1 سال بعد, چاہے 2 سال بعد, چاہے 5 سال کے بعد, روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو گئی تو اب روزوں کی قضا فرض ہے, ضروری ہے. جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا کر. فدیہ دینے سے قضا معاف نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, فدیہ دے دیتے ہیں. مسئلہ یاد رکھو, فدیہ صرف ان لوگوں پر ہے جن کے اچھے نہ ہونے کی, تندرست نہ ہونے کی امید نہ ہو. ایسا نہیں کہ میں رمضان میں بیمار ہوں تو رمضان کے بعد فدیہ دے دوں. نہیں, جب کبھی ٹھیک ہو جاؤ اور ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا کہ اب ٹھیک نہیں ہوگا, تو فدیہ دے. اور بعد میں تم ٹھیک ہو گئے تو قضا بھی رکھو. سمجھ میں آئی بات؟ مسئلہ یاد رکھو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں فدیہ دے دیتے ہیں. فطرانہ, جس کو فدیہ کہتے ہیں. فدیہ اور فطرانہ سیم ہے. ایک روزے کا 5 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ جتنا فطرانہ ہے, صدقۃ الفطر ہے, اتنا ایک روزے کا ادا کرنا ہے. تو یاد رکھو, کسی کو صحت مند ہونے کی بالکل امید نہیں ہے. جیسے بہت سارے بوڑھے ہیں, بس ختم ہو گئے بیمار, اب اس کو ٹھیک ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. ایسے لوگوں پر فدیہ ہے. لیکن جو بیمار ہونے کے بعد ٹھیک ہونے کا ان کو کیا ہے, یقین ہے, تو ایسے لوگوں کو جب ٹھیک ہو جائے تب قضا کرنی ہے. اور اگر ٹھیک نہیں ہوا, موت آ گئی, تو پھر اب ان کے باقی جو روزے قضا رہ گئے ہیں تو وارث لوگ ان کا کیا کر دیں, فدیہ ادا کر دیں روزے کا. یہ اصل مسئلہ ہے. شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, ماشاءاللہ میں بیمار ہوں فدیہ دے دوں. نہیں چلے گا فدیہ. بیماری کے بعد اچھا نہ ہونے کا یقین ہو. اگر بیمار ہے آپ رمضان میں اور ماشاءاللہ دسمبر میں ٹھیک ہو گئے تو قضا کرو, فدیہ نہیں ہے. فدیہ تو اس صورت میں ہے جبکہ تم ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے. اور اگر ٹھیک ہو گئے, فدیہ دے دیا آپ نے, ایسا لگتا ہے ٹھیک ہونے والے نہیں, فدیہ دے دیا, بعد میں قضا بھی کریں. یہ یاد رکھو. سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تقول کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان. کب روزہ رکھنا ہے جو قضا کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ شوہر جب جس دن مکان میں نہ ہو, یعنی سفر میں ہو, یا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں شعبان میں زیادہ روزہ رکھتی تھی. شعبان میں اپنے جو حیض کی وجہ سے یا جو پاکیزہ دین نہیں تھے اس میں میرے دین جو چھٹ گئے ہیں, میں ان کی قضا کرتی تھی شعبان میں. کیوں؟ اس لیے کہ شعبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے, تو میں بھی ان کے ساتھ اپنا روزہ پورا کر لیتی تھی. آج کل عورتوں کے بیچارے کے روزے قضا ہو جاتے ہیں تو اکیلے اکیلے رکھتی ہے, شوہر کو بھی ساتھ دینا چاہیے کہ منڈے کا اور ٹرسڈے کا روزہ رکھ لے شوہر, تو اس کے ساتھ بیوی بھی رکھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ زیادہ رکھتے تھے, نفل روزہ, یا منڈے کو یا تھرسڈے کو یا 13, 14, 15 آف ایوری منتھ. تو حضرت عائشہ اور آپ کی ازواج کیا فرماتی ہے, ان دنوں میں ہم بھی روزہ رکھ لیتی تھی جو ہمارا چھوٹ گیا ہے, جو ہمارا باقی ہے, تاکہ آسان ہو جائے. اور سائل کا ایک اور سوال ہے, بچپن میں میری والدہ مجھے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی. تم چھوٹے ہو, چھوٹے ہو, چھوٹے ہو ابھی, اور لگتا ہے میں بالغ ہو چکا تھا, میرے 3-4 سال کے روزے چھوٹ گئے ہیں, والدین مجھے منع کرتے رہے, چھوٹ گئے ہیں, تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ بالغ ہوتے ہی روزہ تو فرض ہو جاتا ہے, بالغ ہوتے ہی روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر 15 شعبان کو لڑکا بالغ ہو گیا یا لڑکی بالغ ہو گئی, تو 15 شعبان کے بعد سے اب رمضان آئے گی, یا 15 روزے میں بالغ ہو گیا رمضان کے 15 روزے میں, تو اب بقیہ 15 روزے پورے کرنے ہیں اس کو, اس سے پہلے کے نہیں. تو بالغ ہونے سے لے کر جتنے روزے نہیں رکھے ہیں ان روزوں کی کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے. جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اس کی قضا کرنی ہے. لیکن سوال ہوتا ہے قضا کیسے کریں, قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات سنی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ رکھتے تھے ساتھ میں روزہ ہم بھی رکھ لیتی تھی. اگر شوہر کوئی نفل روزہ رکھ لیتا ہے, مثال کے طور پر 13, 14, 15 ہے, یا اسی طریقے سے شعبان کے روزے رکھ لیتے ہیں 14, 15 جو بھی ہو, یا اسی طرح محرم کے روزے رکھ لیتے ہیں, محرم کے روزے بھی ہے 10, 11, 9, 10 یا 10, 11 دو روزے ہیں شوہر رکھتا ہے, یا اسی طرح شوال کے روزے ہوتے ہیں, رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے ہیں, 30 تو رمضان کے ہیں, حدیث میں آتا ہے تمہارے 29 روزے ہو, یعنی چاند نظر آ گیا تو بھی تم کو 30 روزے کا ثواب ملے گا. سو 300 دن کا ثواب مل گیا, ایک روزہ رکھے تو 10 دن کا, تو 30 روزہ رکھے تو کتنا؟ 300 دن کا ثواب. اور اس سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360. اور شوال کے 6 روزے رکھیں گے تو 6 روزے کے 60 ڈیز کا ثواب. تو نارملی پورے سال کا ثواب تو ہمیں رمضان اور شوال کے روزے میں مل جاتا ہے. اس کے بعد جو پھر ایکسٹرا رکھتے ہیں 13, 14, 15 منڈے تھرسڈے جو بھی ہو اس کا ثواب. تو ان دنوں کے اندر شوال میں شوہر روزہ رکھ رہا ہے, تو بیوی کا اگر رمضان میں حیض کی وجہ سے, ناپاکی کے دن کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہے, تو وہ 6 دن میں ہسبینڈ کے ساتھ تو بھی روزہ رکھ لے, اسی کی قضا کر لے, شوال کے روزہ نہ رکھے. یہاں فرماتے ہیں عجیب بات, فرمایا تم ان شوال کے دنوں میں یا شعبان کے 15ویں روزے میں یا محرم کے 9-10 میں یا اسی طریقے سے اور بھی جو روزے ہیں اس میں تم ثواب کی نیت سے کہ میرے روزے چھوٹ گئے ہیں میں اس کو رکھتی ہوں اور اللہ مجھے ان مبارک دنوں کا بھی ثواب عطا فرما, علماء فرماتے ہیں اس کی قضا بھی ادا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان دنوں کے ثواب بھی عطا فرما دیں گے. دو چیزیں یہ آسانی کر دی عورتوں کے لیے, اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں کثرت سے روزہ رکھ لے جو اپنے چھوٹ انتظار نہ کرتی رہے. ہمارے عورتیں کیا انتظار کرتی, جب چھوٹے دن آئیں گے تب رکھ لیں گے, موت کا تو بھروسہ نہیں ہے. اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی اپنے قضا کو پورا کر لینا چاہیے, لیکن دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے پورا کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں جب روزے چھوٹ جاتے تھے تو اس رمضان کے کب رکھتی تھی؟ शाबान में, अब उसके बाद रमजान दूसरा आने वाला है, तो शाबान में उस अपने पिछले रमजान की कजा को क्या कर लेती थी, पूरा कर लेती। अभी इस रमजान में कजा हो तो फिर आगे, क्यों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर के रोजा रखते थे, वो अपना नफर रखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारी माए क्या है, अपने बकिया रोजे को पूरा कर लेती थी। यही मसला है, बहुत सारी मर्तबा साहिल सवाल करता है कि शौहर जो है कजा रोजा रखने से राजी नहीं है, जब देखे तब रोजा रखती रहती है ना, शोहर राजी नहीं है और कजा रोजा मुझे रखने नहीं देती, तो क्या मसला होगा। ऐसी सूरत में सबसे अच्छा औरतों के लिए मसला यही है, कंटिन्यूसली रोजा न रखें, इसलिए क्या शोहर की जरूरत भी पूरा करना जरूरी है। कंटिन्यूसली 10 दिन के रोजे छूट गए हैं आप रखेंगी तो ऐसी सूरत में कमजोरी महसूस होगी और शौहर की जरूरत है तो पूरा नहीं कर सकोगी। हदीस में आता है शौहर ने अगर बुलाया और औरत ने उसकी जरूरत को पूरा नहीं किया तो पूरी रात उस पर अल्लाह की लानत होती है। एक तरफ ये भी मसला है, इसलिए लगातार न रखें, मौका ब मौका अपने रोजे को पूरा कर ले, जब भी मौका मिले अपने रोजे को पूरा कर ले, ये असल मसला है। अगर मौका मिला कि चलो हफ्ते में 2 दिन के रोजे रख लिए औरतों ने, जो बकिया 10 रोजे छूटे हैं तो 2 दिन के इस हफ्ते में रख लो, 2 दिन के आइंदा हफ्ते में रख लो, 2 दिन के उसके बाद रख लो, या 2 रोजे इस महीने में रख लो, 2 रोजे आइंदा महीने में रख लो, इसी तरह से पूरा कर लो। हाँ अगर शोहर भी रोजा रखता है नवाफिल रोजा, जैसा कि मैंने बतलाया मुहर्रम के रोजे रखता है शोहर, उनके साथ अपने आप कजा रोजा रख लो, उस वक्त औरतों को चाहिए कि अपने मुहर्रम के रोजे ना रखो, शव्वाल के रोजे ना रखो, रमजान की कजा के रोजे रख लो, या इस तरह शाबान का रोजा शोहर रखता है उसके साथ ये भी रख लो, तो क्या होगा अपने कजा, इसलिए कजा रोजा पूरा करना लाजिम है, वो जरूरी है। सवाल उसका होगा, मुहर्रम के रोजे का नहीं होगा, उसका तो सिर्फ सवाब मिलेगा। लेकिन अगर औरतें ये नियत कर ली, कर ले कि अल्लाह मुझे इसका भी सवाब दे दे, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कजा भी पूरे हो जाएंगे और इन दिनों के मुबारक दिनों का सवाब भी मिल जाएगा। ये आसानी कर दी है। जो आम तौर पर सियामु फी यौम अरफा मिस्लु कज़ाइन औ नज़रिन औ कफ़ारा व नवा मअ सौम अन यौम अरफा अफ्ताबाज़ुम बिस्सिहति वल हुसूल, यही मसला बयान किया है कि अरफा का रोजा है तो अरफा का रोजा ना रखो, अपना कजा रोजा रख लो, शव्वाल के रोजे ना रखो जो रमजान में छूट गए वो रख लो, मुहर्रम के रोजे ना रखो जो छूटे वो रख लो, तो सिर्फ फायदा हो जाएगा, अपने कजा रोजे पूरे हो जाएंगे। कजा रोजे के छूटने पर मौत आ गई तो उसका फिदिया देना पड़ेगा, नहीं तो कब्र में पकड़ होगी। मुहर्रम वगैरह के रोजे नहीं रखे हैं आपने तो उस पर पकड़ नहीं होगी, हाँ सवाब बहुत ज्यादा है लेकिन पकड़ नहीं होगी, इसलिए कजा रोजे पहले पूरा कर ले, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। सफर में कजा रोजे की नीयत से करते हैं, आप सफर कर रहा है, सफर में तो क्या है, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर है, अगर बीमार है या फिर सफर में है तो उस वक्त रोजा ना रखें, रमजान में रोजा ना रखें, बाद में रख लेना अगर सफर शरई है। अ पर्सन ट्रैवलिंग मोर देन 48 miles, सो ही नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू कीप फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, बाद में रख, सवाब अलग चीज है। एक आदमी हट्टा कट्टा है, सफर से उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, रखना चाहे नूर नला नूर है, लेकिन जरूरी और फर्ज वाजिब नहीं है, अल्लाह ने खुद इजाजत दी है। फमन कान मिनकुम मरीदा अव अला सफर फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, बाद में दूसरे दिनों में कजा कर लेना उसकी। लेकिन यहां सवाल साहिल ये करता है कि मिसाल के तौर पर बकर के रमजान में रोजे कजा हो गए, अभी अदा नहीं कर सका, अभी रमजान के 2, 3, 4, 5, 10 बार रोजा उसके कजा हो चुके हैं और दूसरा रमजान आ गया, दूसरा रमजान आ गया, अब बकर ने सफर शुरू किया, यहां से जा रहा है दुबई या फिर अफ्रीकन कंट्री में या कहीं भी सफर कर रहा है, अब 48 माइल से कहीं दूर जा रहा है, तो अब उसने रमजान के महीने में सफर कर रहा है, ही सपोज टू कीप رمضان روزہ, لیکن اس نے نیت کر لی اپنی گزشتہ سال کے قضا کی نیت کر لی, تو کیا اس کو اس کی وہ قضا ادا ہو جائے گی رمضان میں یا رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے؟ وَحَاسِنُ أَنَّ الْمَرِيزُ وَالْمُسَافِرُ لَوْ نَوَيَا وَاجِبًا آخَرَ وَقَعَ مِنْهُ. کیا جواب ہے؟ بکر دوسرے رمضان کے سفر میں گزشتہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کا وہ قضا روزہ رمضان میں ادا ہو جائے گا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ سفر میں گزشتہ سال کے چھوٹے ہوئے رمضان کی قضا کرتا ہے تو اس کا قضا ادا ہو جائے گا, لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں ہے, اس کو زیادہ ثواب اس رمضان کے روزے رکھنے کا ہے, لیکن اگر نیت کر لی ہے تو اس کے قضا ادا ہو جائے گی. اور میری بات سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لاسٹ ایئر رمضان میں دو روزے چھوٹ گئے, اب اس سال رمضان میں سفر کر رہا ہے, پاکستان جا رہا, اب وہاں تو مسافر ہے بھائی, چار پانچ دن رہوں گا پھر آ جاؤں گا, اب تو مسافر, اس لے کے 14 دن سے کم کہیں کنٹری میں آدمی چلا گیا, 48 مائل سے زیادہ, اینڈ لیس دین 14 ڈیز اگر وہاں رہتا ہے تو یہ مسافر ہے, مسافر ہے, اور مور دین 14 ڈیز ہو تو مسافر نہیں, وہ نارمل ہو جائے گا وہاں جا کر. اب یہ ان 14 دن میں اپنے, یا عورت کا مسئلہ لے لو, اس کے رمضان میں سفر کر رہی ہے شوہر کے ساتھ, اور لاسٹ ایئر رمضان کے 7 روزے حیض کے ایام کے چھوٹ گئے, اور اس نے سفر میں وہ 7 روزے کی نیت کر لی قضا کی, تو اس کے قضا ادا ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے, بہتر اس کے لیے یہ ہے اور زیادہ ثواب یہ ہے کہ اسی رمضان کے روزے رکھے, بعد میں قضا کر لینا جو قضا باقی ہے, اس لیے کہ رمضان کے روزے کے ثواب بہت زیادہ ہے. اچھا, اور یہی مسئلہ ہے شوال کے 6 روزے میں بھی, کسی نے اگر قضا کی نیت کر لی تو اس کا قضا ادا ہو جائے گا, اور اچھی نیت ہے تو اس کو شوال کے روزے کا بھی ثواب مل جائے گا. بات یہ بات یہاں بیان کی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال کان کصیام الدہر. یہ تو ہے حدیث, میں نے آپ کو سنا دی کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے 30 روزے اور پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھتا ہے, اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا. یہ حدیث مسلم شریف ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں, لا یکرہ صوم التطوع لمن علیہ قضاء رمضان, لیکن نفل روزہ کی جگہ اگر رمضان کے قضا کی نیت کر لے تو کوئی پرابلم نہیں, مکروہ بھی نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو. بلکہ یہ صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام ہدایہ کی شرح میں لکھتے ہیں, اقول فی فتح القدیر رسام فی یوم عرفہ مثل قضا. عرفہ کے دین میں قضا کے معنی قضا روزہ رکھ لے, قضا کا روزہ رکھ لے, یا نظر کا روزہ رکھ لے, یا کفارے کا روزہ رکھ لے, یا جو اٹھ کے چھوٹے ہوئے ہیں اس کے روزے رکھ لے تو اس کا ثواب زیادہ ہے. اسی طرح اور دینوں میں بھی, شب برات کی دن اگر قضا کی نیت کر لی, شوہر تو رکھ لا ماشاءاللہ 9 نفل, عورت نے قضا کی نیت کر لی, یا ایک آدمی ہے جس کے لاسٹ رمضان میں ایک روزہ چھوٹ گیا, اب شب برات کی جگہ پر یہ قضا کی نیت کر لے تو بہتر ہے, اس کا قضا ادا ہو جائے گا. 10 محرم کو, 9 محرم کو لاسٹ ایئر کے رمضان کی قضا کر رہا, ٹھیک ہے, اصل تو قضا ہے نا, اس کو پورا کرنا ضروری ہے. سوال ہوتا ہے کیا میں دوسرے کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ ساحل پوچھ رہا ہے, میری ماں انتقال کر گئی ہے اور 10 روزے اس کے باقی ہے, کیا میں میری ماں کے 10 روزہ رکھ سکتا ہوں قضا؟ ارے مسئلہ سن میں آتا ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, مائی فادر لیفٹ, he missed 10 روزہ, can I fast the 10 روزہ of my father? تو سائل کے اس سوال پر مالک, امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے, یہ سوال ایک صحابی نے کیا تھا کہ کیا کوئی ایک آدمی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے؟ شیعہ لوگوں کے یہاں تو ہے, ہمارے یہاں جو ہندوستان میں ہے سورت کے, وہ کہ تو میری زہر پڑھ لے میں تیری اثر پڑھ لوں گا, تو میری زہر پڑھ لینا, یعنی تیری تو پڑھنا اس کے بعد میری بھی پڑھ لینا, نماز کے بعد میں اثر میں جاؤں گا تو اپنی اثر پڑھوں گا, بعد میں تیری بھی اثر پڑھ لوں گا, ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है। हदीस में कान यसअलु हल यसूमु अहदुन अन अहद, क्या एक आदमी दूसरे की तरफ से रोजा रख सकता है? अब युसल्ली, यह हदीस है, हजरत इब्न उमर सवाल कर रहे हैं, फरमाया अब युसल्ली अहदुन अल अहद, या एक आदमी दूसरे की तरफ से नमाज पढ़ सकता है? बाप का इंतकाल हो गया, 50 नमाज उसकी कजा हो गई है, छूट गई है, क्या मैं अपने बाप की 50 नमाज पढ़ लूं दुनिया में? टाइम मिल जाए जोर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, कजा ही तो करनी है अपने बाप की, कर सकता हूं। फयकूल ला यसूम अहदुन अन अहद वला युसल्ली अहदुन अन अला अहद। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया न किसी की तरफ से रोजा रख सकते हैं और न किसी की तरफ से नमाज पढ़ सकते हैं। ये जमहूर उलमा का मसलक है, याद रखना। इससे मालूम होता है कि कोई शख्स दूसरे के कजा रोजे अपनी तरफ से नहीं रख सकता है। जिस आदमी पर रोजा फर्ज है उसी को रखना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई बीमारी और बुढ़ापे की वजह से वो रोजा नहीं रख सकता है, माजूर है, तो मरते दम तक रोजा रखने की उसके अंदर ताकत ना हो तो ऐसे शख्स के इंतकाल के बाद उसके रोजे का फिदिया देना पड़ेगा। नमाज का फिदिया देना पड़ेगा, रोजे का फिदिया। कितना फिदिया है? एक नमाज का 5 पाउंड गिन लो, जो सदकतुल फितर है, या 4 पाउंड जो भी है वो गिन लो, एहतियातन 5 पाउंड गिन लेते हैं। एक नमाज छूट गई तो मरहूम की तरफ से उसकी एक नमाज का 5 पाउंड गिन लो, तो दीन में 6 नमाज गिनी जाएगी अहनाब के यहाँ, बाकी इमाम के यहाँ 5 है। इमाम अबू हनीफा फरमाते 6 नमाज का रोजाने का फिदिया देना है, 5 नमाज तो फर्ज है और वितर की नमाज वाजिब है, उसको भी शुमार किया है, तो दीन की 6 नमाजें हो गई तो उसके 30 पाउंड हो गए, एक दिन के 30 पाउंड हो गए, या 4 के हिसाब से गिने जाए तो उस हिसाब से जो भी हो, तो इतना फिदिया एक दिन का है। तो अगर 30 दिन की नमाजें छूटी है तो फिर उस हिसाब से। औरतों के लिए उनके हैज की अय्याम की नमाजें नहीं गिनी जाएगी, इसलिए कि वो नमाजें औरतों पर माफ है। अगर औरत मर गई और उनको हैज आ रहा था तो उनकी बेटियों को पता है या उनकी बहू किसी को पता हो, तो ऐसी सूरत में उस औरत के उन अय्याम की नमाजें तो माफ है, इसलिए कि एक औरत 7 दिन तक हैज की हालत में हो तो हैज से पाक होने के बाद नमाज की कजा नहीं है, रोजे की कजा है। 7 दिन का रोजा रखना आसान है, बनिस्बत 7 दिन की नमाजें मुश्किल है, इसलिए कि 35 नमाज फिर उस दिन की 5 नमाज कितना मुश्किल हो जाता है औरत पर। इसलिए औरतों के लिए हैज के अय्याम की नमाजें क्या कर दी है? माफ कर दी है, कजा नहीं करनी है। हाँ, रोजा अगर रमजान के छूट गए हैं तो उनको बाद में क्या करना है? रोजा रखना पड़ेगा। ये मसला है, तो ऐसी सूरत में वो फिदिया है एक रोजे का 4 या 5 पाउंड दे दे। तो इस तरीके से जितने रोजे छूटे हैं मरहूम के तो उस हिसाब से दिए जाएंगे। इसमें मसला साफ हो गया कि वो रोजा जब तक नहीं रख सकता है, मिसाल के तौर पर 1 साल बीमार रहा, उम्मीद है आइंदा साल में ठीक हो जाऊंगा फिर रोजा रखूंगा, फिर बीमार है नहीं ठीक हुआ, दूसरी रमजान आ गई फिर बीमार है, इंशाल्लाह आइंदा साल रखूंगा, अब तीसरा साल आया इंतकाल हो गया उसी बीमारी में, तो अब उसकी तरफ से क्या है? उन 2 साल के फिदिया अदा करना है, टू पे 2 ईयर्स वो 30 और 30 रोजे का फिदिया, और जितनी नमाज अगर छुट्टी है तो उसका फिदिया भी देना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखो। हदीस में है, कैसे फिदिया है जी? एक फिदिया तो वो है जानबूझकर नमाज छोड़ने का, वो अलग है, वो मैंने समझाया, एक गुलाम आजाद करो या फिर 60 रोजे रखो या फिर 60 मसाकीन को खाना खिलाओ, 60 मसाकीन को। अब वो कैसे? और एक आदमी कहे मैं एक ही दिन में इतने पैसे दे दूं कि 120 फकीर खाना खा ले, ये नहीं जी। दिन में 2 मर्तबा खिलाना है, दोपहर का बराबर से, एक बर्गर नहीं चलता है, उसका पेट भरना चाहिए, फकीर का पेट भरना चाहिए, बड़ा गुना किया है ना तूने, दोपहर का भी खाना खिलाओ शाम का भी खिलाओ, तो 60 डेज में उसको डबल खिलाना है। और अगर कोई आदमी यूं कहे मैं दिन का एक ही दिन खिलाता हूं तो 60 नहीं आपको 120 डेज खिलाना पड़ेगा डबल, इसलिए कि दोपहर का आपने रोजाना खिलाया है तो शाम का तो बाकी है, तो दूसरे 60 डेज खिलाना पड़ेगा। तो या तो 120 डेज में उसको खिलाओ या फिर 60 डेज में डबल खिलाओ, दोपहर का भी खिलाओ और शाम का भी खाना खिलाओ। ये है, ये हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जो रोजा बीमारी की वजह से छूट गया, इंतकाल हो गया है, तो अल्लाह के नबी शासन फरमाया, साफ साफ हदीस है, फिल्लदी यमूत वालेही रमजान वलम यगजी युतइमु अनु लिकुल यौम निस्फ सा मिन बुर, आधा सा गेहूं यानी अंदाजे से 4 या 5 पाउंड होते हैं एक रोजे के, उसको अदा करने पड़ेंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जैसा कि फितर यानी जो फितर हम देते हैं वो। अच्छा, बीमारी के दिनों में जो रोजे छूट गए हैं उसका फिदिया दे दे या बाद में कजा करे, ये मसला मैंने समझा दिया आपको। बहुत सारे लोग क्या है, रमजान में बीमार हो जाते हैं और उसका फिदिया रमजान के बाद दे देते हैं, भाई मैं तो बीमार था तो फिदिया दे दूं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इंतजार करो अपने ठीक होने का, इंतजार करो, इस साल नहीं अगले साल, समझ में आई बात, फिर तुम ठीक हो गए कजा करो। हां अगर ठीक ही नहीं हुए हैं तो फिर ऐसी सूरत में बाद में उसका फिदिया है, या तो जैसे मैं अभी मसला बयान किया कि जितने जितने साल के रोजे छूटे हैं उसका फिदिया देना पड़ेगा। फिर ये क्यों कह रहा हूं मैं, कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इसको बयान किया है, अल मरीज अल मुसाफिर ला यसूमान फी हाल अल मरीज व सफर लिमा फी ज़ालिका, बीमार आदमी हो या मुसाफिर हो तो अगर उसने बीमारी की हालत में और सफर की हालत में रोजा नहीं रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में क्या करे, युफ्तरान व यक्ज़ियान मिन, देखा बाद में उसकी कजा करनी है। और यही हदीस हजरत आता अबू हुर्रा अल्लाह तआला की नकल फरमाते हैं। अच्छा, कफारा कब वाजिब होता है, साहिल ने सवाल किया कफारा कब वाजिब होता है, फरमाते हैं कफारा बगैर जानबूझकर रोजा छोड़ने पर वाजिब हो जाता है, इसको कफारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कफारा यानी 60 रोजा रखना है कॉन्टिन्यूसली या तो 60 मिस्कीन को खाना खिलाना है। ये जो हदीस मैंने कल आपको सुनाई थी तफसील के साथ एक सहाबी की, कफारा क्या है और कफारा कितना देना है उसको बयान कर, बीच में एक भी दिन नागा ना हो 60 रोजा में। हाँ अगर बीच में नागा हो गया तो फिर दोबारा करना पड़ेगा, रोजे रखने पड़ेंगे 60 रोजा मुतताबिअन। हाँ औरत अगर उसने कोई गलती कर दी ऐसी जानबूझकर रोजा तोड़ा जानबूझकर, तो ऐसी सूरत में उसके लिए क्या है, सिर्फ हैज के अय्याम में माफ है। माफ का क्या मतलब, उस दिन में न रखे चलो बाद में 60 पूरे करने हैं, चूंकि वो तो अल्लाह की तरफ से बीमारी है। लेकिन एक आदमी 60 रोजा रख रहा है बीच में गड़बड़ कर दी है तो क्या होगा, दोबारा रखना पड़ेगा 60 रोजा। हाँ ये मसला भी साहिल ने सवाल किया, क्या हम कफारे का खाना जो है 60 जो क्या तलबा को खिला सकते हैं, यानी गरीब तलबा जो होते हैं मदरसे के, ये क्या कहीं फकीर ही को तलाश करना पड़ेगा, फकीर कहाँ तलाश करने जाएंगे, यूके में तो मिलेंगे नहीं जी, कहाँ तलाश करने जाएंगे, जाना पड़ेगा सफर करके। तो ये सवाल किया साहिल ने कि अगर कोई शख्स रोजे के कफारे में ऐसे तलबा को खिला दे जो जकात के मुस्तहिक है, गरीब तलबा है, तो क्या कफारा अदा हो जाएगा, इसलिए कि तो जकात नहीं है तो कफारा है, तो क्या कफारा अदा हो जाएगा। सो इसलिए कि मालदार स्टूडेंट अगर मदरसे में हो तो ऐसी सूरत में अगर उन्होंने खाया तो कफारा अदा नहीं हुआ, इसलिए कि मर्दान स्टूडेंट के ऊपर तो जकात वाजिब नहीं होती है, कफारा भी नहीं होता है, उनके पास जकात लेने की गुंजाइश ही नहीं है। दूसरा सवाल किया, 120 गरीबों को एक वक्त में खिला दिया है ना, बिठा दिया 120 को चलो खाओ, क्या 60 दिन का एक दिन में हो जाएगा, 60 डेज तक मुझे रोजाना जाना पड़ेगा और फकीर को तलाश करना पड़ेगा और उसको खिलाना पड़ेगा, तो क्या 120 दिन के अंदर या एक वक्त के खाने के बकदर हर एक को पैसा दे दिया, भाई तू ले जा 5 पाउंड, तू 5 पाउंड, तू 5 पाउंड, अब ये 60 को दो दो वक्त के 10-10 पाउंड दे दिए, 10 तू ले जा, दो वक्त का खाना खा, सुबह एक बगा खा ले शाम में खा ले, एक पिज्जा सुबह खा ले, एक शाम में खा ले, 60 को क्या कर दिया आपने, 10-10 पाउंड दे दिया। ये अजीब अजीब मसाइल है, लोग करते हैं, इसीलिए तो सवाल होता है। ऐसे ऐसे लोग डंडे करते हैं, इसीलिए वो बहुत आसानी तलाश करते हैं ना, बहुत आसानी। जैसे हमारे जिनके पास हमने इफ्टा किया था, मुफ्ती, हम तो अपने आप को मुफ्ती बुलाते नहीं है, कोई हमको हाजी साहब भी कहता है, मौलवी साहब भी कहता है, शेख साहब भी कह देता है, मुफ्ती साहब भी कहता है जी, हम कोई उसके, लेकिन हम जब इफ्ता कर रहे थे, मुफ्ती बन रहे थे हमारे उस्ताद के पास, सवाल आया जी, सवाल, क्या इमाम साहब को वेजेस में जकात के पैसे दे सकते हैं? और एक और मर्तबा सवाल है, क्या इमाम साहब को, हमारे मस्जिद के इमाम साहब को हम सूद के पैसे दे सकते हैं? मसला हमारे सामने था, हजरत ने हमें बताया, चूंकि असबाक में बैठे थे इफ्ता क्लास में, मुफ्ती के पास जो बैठे, हम तो अजीब अजीब सवाल होता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत मुफ्ती साहब रोजाना कहते थे, सिराज इसका जवाब तलाश करो, इसका सवाब तलाश करो, बहुत सारे माशाल्लाह तलबा होते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो जवाब तलाश करके लाता था। अल्लाह का फजल हुआ कि 207 बच्चों में मेरा नंबर 1 आया था इफ्ता में, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आलिम क्लास में भी नंबर 1 आता रहा, हिफ्ज में भी नंबर 1, रात में भी नंबर 1 आता रहा, तो ये अल्लाह का फजल हुआ। ये वालिदैन की दुआ, उस्तादिज़ा की दुआ, उलमा की खिदमत करो, याद रखो, आप यकीन जानिए, उलमा की खिदमत करोगे, उलमा से मोहब्बत रखोगे, तो आपके नहीं, आपकी औलाद ने, आपकी औलाद की औलाद, किसी तरह भी अल्लाह किसी को भी हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाएगा। ये बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, और हमने इसका तजुर्बा किया है कि उनके घर में कितने बच्चे हाफिज बने। जाहिल आदमी है, कोई नहीं, कुछ नहीं जानता, लेकिन उलमा की खिदमत के ऊपर क्या है, वालिदैन की खिदमत पर अल्लाह दुनिया देता है, और नेक और सालिहीन उलमा की खिदमत के ऊपर अल्लाह ताला घर में औलाद को इल्म देता है। क्या देता है? इल्म देता है। ये बात हमेशा याद रखो, इसलिए कि हमारे शेख यूनुस साहब तशरीफ लाए थे खरोट डालूम में, तो एक उनके शागिर्द थे, 3 दिन के बाद मिलने के लिए आए, तो उस्ताद शेख यूनुस साहब बड़े गुस्से हो गए, मैं तेरे गांव में इतने यूपी से आया हूँ, 3 दिन हो गए, तो आज मुझे मिलने आता है? तो कहा हजरत वालिदा बीमार थी, तो वहां था, वालिदा की खिदमत का, वालिदैन की खिदमत से दुनिया तो मिल जाएगी, लेकिन उस्ताद की खिदमत नहीं करोगे तो तुम्हारे इल्म से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मालूम होता है, फरमाया उस वक्त हजरत ने कहा था शेख यूनुस साहब ने। तो उलमा को, आज ही मैं पढ़ रहा था एक अजीब बात के, मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकात हमारे गुजरात में है, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, अभी तो फिलहाल वही सबसे बड़े हैं माशाल्लाह, पूरे गुजरात में सबसे, उम्र में भी बड़े और इल्म भी बड़े हैं, शेख है बड़े, उनका आज ही मैं पढ़ रहा था, हजरत ने भेजा, फरमाया कि लोग ये बहुत सारे उलमा जो आते हैं कलेक्शन के लिए, तो उनकी बेअदबी करते हैं, उनमें बहुत सारे शेखुल हदीस भी होते हैं, बड़ी बड़ी किताब पढ़ाते हैं, बहुत सारे साहिब निस्बत भी होते हैं, किसी के खलीफा होते हैं बुजुर्गों के, और वहाँ उसमें हजरत ने लिखा है कि तुम्हें देना हो तो दो, न देना हो तो तुम बेअदबी ना करो, उनके साथ बुरा बर्ताव ना करो। फिर उसके बाद नकल किया, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी फरमाते हैं कि जिन लोगों ने उलमा की बेअदबी की है, तो उन लोगों की कब्र को खोद कर देख लो, अगर कि उनका सर अल्लाह पाक ने किबला से फेर दिया है, अगर ना हो तो आओ रशीद अहमद की गर्दन पकड़ लेना कयामत के दिन, खोल के देख लो। इसलिए इल्म अल्लाह पाक ने दिया है, इल्ला अल्लाह पाक ने उनको इल्म दिया, और उलमा नबी के वारिस है, और हदीस में है जो उलमा को बुरा भला कहता उसने नबी को बुरा भला कहा, और नबी अल्लाह के दीन के वारिस है, जिन्होंने नबी को बुरा भला कहा उन्होंने अल्लाह को बुरा भला कहा, सही हदीस है। इसलिए मसला जो मैं बयान कर रहा था कि क्या गरीब तलबा को खाना खिला सकते हैं, लोग अजीब अजीब सवाल करते हैं, इमाम साहब को अगर सूद के पैसे देंगे, तुम तो उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो तुम्हारी नमाज ही कैसे कबूल होगी अगर वही सूद खाएगा तो? ऐसे ऐसे मसाइल आते थे, अजीब अजीब मसाइल। खैर, तो रोजे का कफारा तो अदा हो जाएगा, लेकिन मालदार तालिब इल्म क्या करते हैं, जकात उनके ऊपर वाजिब नहीं होती है, उस वक्त उन तलबा को जो गरीब है उनको अलग करके, जो फकीर हो उनको खाना खिलाया जाए, या फिर इसी पैसे को उनको कुछ बना दिया जाए, भाई कपड़े बना दिए या कुछ बना दिया उन्हीं कफ्फारे के पैसे से, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मालदार तलबा नहीं, रोजे के कफ्फारे में एक वक्त में 120 को खिलाया आपने, एक ही वक्त में खिलाया, 7 दिन तक कौन करेगा 120 को, या एक वक्त के खाने के पैसे देने से कफ्फारा अदा नहीं होगा। 120 को खिला दिया या फिर पैसे दे दिए तो सबको बिठा करके कफ्फारा अदा नहीं होगा, याद रखो। इसलिए बेहतर यही है कि 7 दिन तक आप दे दीजिए मदरसे में, भाई 7 तलबा है मदरसे में, भाई ये सुबह शाम मेरे इतने पैसे उनकी तरफ से, इनको सुबह शाम खाना बनाकर खिला दीजिए तो मसला हल हो जाएगा। बहुत सारे गरीब तलबा बहुत सारे जगह पर होते हैं तो बंदोबस्त हो जाता है। अगर हम कहीं गरीब लोगों को, फकीर लोगों को तलाश नहीं कर सकते हैं। याद रखो, एक आदमी ने मुझे कल मसला पूछा, रमजान के बाद में एक रोजा रख रहा था नफल, मैंने दोपहर में तोड़ दिया, क्या कफ्फारा देना है? हमने कहा कफ्फारा सिर्फ रमजान के रोजे का है, चूंकि रमजान के रोजे का सवाब बहुत है और न रखने पर अजाब बहुत है, तो रमजान का रोजा फर्ज है तो फर्ज पर भी सजा भी बहुत बड़ी है, इसलिए रमजान के रोजा तोड़ने पर क्या है, कफारा है। लेकिन रमजान के अलावा और कोई रोजा आपने तोड़ दिया नफल वगैरह, या कजा रोजा तोड़ दिया आपने, कजा रखा है, उसको तोड़ने से भी कफारा नहीं है, दूसरे दिन कजा कर ले। रमजान के ड्यूरिंग द रमजान अगर किया है तो फिर उसका मसला बहुत टेढ़ा है। बाद में कोई आदमी नजर का रोजा तोड़ दिया, बाद में रख ले, कफारे का रोजा बाद में रख ले, यानी पूरा कर ले, याद रखो। तो ये जो रोजे हैं उसके बारे में है कि अगर रमजान के अलावा कोई ने रोजा रखा, साहब किराम देखो अल्लाह के नबी, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, अब बाकी रह गया, इधर बैठी है एक औरत यानी आपकी चचाजाद बहन, और इधर बैठे अबू बकर और उमर बड़े साहबा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो राइट साइड से शुरू करने का हुक्म देते हैं, भाई अल आयमन फल आयमन, दानी तरफ शुरू करो, ऐसा उल्टा तो नहीं दे सकते, इधर तुम पियो, लेकिन इधर बैठे अबू बकर और उमर, देना तो इनको चाहिए, तो बड़े लोग हैं, लेकिन मसला यह है कि दानी तरफ शुरू करो। तो यह एक रिवायत में बुखारी शरीफ में बच्चा था हजरत अनस या अब्दुल्लाह इब्न उमर को बच्चा था, तो अब इधर बच्चा इधर अबू बकर है, लेकिन मसला भी है कि दानी तरफ शुरू करो, तो पूछा कि इनको दे दो, फरमाया नहीं मैं तो इंतजार में बैठी हुई हूं, मैं तो इंतजार में आपकी बरकत पीने के लिए बैठी हूं, अगरचे मेरा नफल रोजा है मैं तोड़ दूंगी लेकिन आपकी बरकत पीऊंगी, बाद में नफल रख लूंगी। तो नफल रोजे पर कोई कजा वो कोई कफारा नहीं है, याद रखना है। ये सिर्फ रमजान के रोजे के अंदर में कफारा है कि ये हमेशा याद रखना। बहुत सारे लोग और दिनों के भी ये समझते हैं कि उसका भी कफारा अदा करना चाहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बस आखिरी बात कहकर खत्म कर देता हूं, क्या सदके फितर अदा न करने की वजह से रोजे आसमान और जमीन के दरमियान में लटकते रहते? रमजान के रोजे जो है ना, 30 रोजे, और उसके बाद क्या रखा है, वहां तो ईद की कुर्बानी रखी है हज के बाद, यहां क्या रखा है, सदकतुल फितर रखा है। तो साहिल का सवाल भी अजीब है, क्या मैं अगर सदकतुल फितर न दूं तो क्या मेरे रोजे आसमान जमीन के दरमियान में लटकते रहेंगे, आसमान पर नहीं जाएंगे, क्या हुक्म है? तो साहिल का सवाल, उसका जवाब यह है, देखो सदके फितर वाजिब है, वो क्या है, वाजिब है। जिस शख्स पर सदके फितर वाजिब है उस पर सदके फितर का देना वाजिब है, वरना उसको गुना होगा, गुनहगार होगा। सदके फितर अदा न करना कबूलियत रोजा और दूसरे फराइज के हासिल करने का जरिया है। क्या मतलब इसका, कि अगर कोई आदमी सदकतुल फितर देगा तो तेरा रोजा कबूल हो जाएगा, रोजे में कमी कोटाई है पूरी हो जाएगी। मालूम होता है कि रोजे की कबूलियत भी सदकतुल फितर पर है, रोजे की कबूलियत भी किस पर है, सदकतुल फितर। रोजे में कोई, जैसे हम कहते हैं फर्ज नमाज के अंदर में कोई कमी कोताही है तो बाद में सुन्नत पढ़ ले, नफल पढ़ ले, अगर कोई कमी या पहले पढ़ ले, उस फर्ज में कोई कमी कोताही होगी तो अल्लाह पाक उस सुन्नत और नफल की वजह से उसकी कमी कोताही को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो रमजान के रोजे में कोई कमी कोताही होगी वो किससे पूरी होती है, सदकतुल फितर से, और सदकतुल फितर वाजिब है। ادا نہ کرنے پر اس کو واجب چھوڑنے کا, جیسے وتر کی نماز چھوڑنے کا, عید کی نماز چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے اس کو وہ گناہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو مسائل کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد اور کچھ مسائل بیان کریں گے. اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے.
جوان ٹھیکیدار ہوئے,
جی جی,
مالدار ہوئے, جوان تھے مالدار ہوئے, لوگوں نے کوئی انکم نہیں ملا, لوگوں نے زکات لے پہ کوئی خیر نہیں سکے.
بالغ ہونے کے بعد اگر ان کے پاس کوئی پیسے نہ ہو تو وہ زکات لے, صرف زکات کا مستحق ہے. لیکن اگر ان کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ملتا ہو یا کسی طرح بھی, تو اس کا بینک بیلنس اگر 1000 سے اوپر ہے تو اس پر خود پر زکات واجب ہوگی. جی, اس لیے کہ 1000 pounds میں تو 52 tola chandi آ جاتی ہے, اس لیے اس پر زکات واجب ہو جائے گی. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں نہ کسی کی طرف سے ہے نہ بابا کوئی عرض ہو جائے, وہ لے سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور کوئی سوال ہے؟ جی,
میں پاکستان جا رہا ہوں, وہاں پہ 30 روز ہو گئے, کیسے ہو جائیں گے؟ تو میں 30 روز خون رکھوں وہاں پہ.
کل مسئلہ میں نے مسئلہ بتایا کہ یہاں آپ کا 30واں روزہ آپ رکھ کر جا رہے ہیں اور وہاں پر ابھی 30واں باقی ہے, ان لوگوں کا 29 ہے.
29 ہو گیا تو میرا 30 ہو جائے گا. ہاں, 30 روز ہو گئے.
ہاں,
تو میرے کتنے ہو جائیں گے پھر؟
ہاں, تو وہ ایک روزہ ان کے ساتھ رکھنا ہے.
رکھنا ہے نا؟
ہاں, ان کے ساتھ رکھنا ہے. اور اس کا الٹا اگر ہو تو بھی رکھنا ہے, اس نے نہیں رکھنا ہے. کیا مطلب؟ آپ یہاں سے ماشاء اللہ 30واں روزہ یا 29 کا رکھ کر جا رہے ہیں, وہاں پر پہنچے تو عید ہو گئی ہے, تو آپ کو 30th والا روزہ رکھنا ہے, ان کے ساتھ عید کرنی ہے. الٹا ہوگا اس کا, پہلے میں الگ ہوگا, اس میں الگ ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك, اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. اللہ تو رحیم ہے, اے اللہ تو کریم ہے, اے اللہ تو غفور ہے, تو غفار ہے. اے اللہ تو نے اس امت کو یہ روزے جیسی نعمت دی ہے. اے اللہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر اللہ اس امت کو عذاب دینا ہو, دینے کا ارادہ کرتے تو ان کو دو چیزیں نہ دیتے, ایک تو قل ہو اللہ احد کی صورت نہ دیتے اور ایک رمضان کا مہینہ نہ دیتے. لیکن اللہ نے اس امت کو معاف کرنا ہے, اس لیے اللہ پاک دونوں چیزیں اس امت کو عطا فرمائی. اللہ تو ہمیں معاف کر دے, رمضان کے روزے ہم رکھ رہے ہیں, اے اللہ ٹوٹے پھوٹے جو بھی ہو اپنے فضل سے قبول فرما کر. اے اللہ اپنی رحمت کا واسطہ, اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ, تیری غفوریت اور غفاریت کا واسطہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے اور ہماری مغفرت فرما دے. رحمت کے عشرے میں تیری رحمت سے محروم نہ رکھنا. اے اللہ ہم سب یہاں, اے اللہ مسائل کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں, ایک ایک مسئلہ سننے کا بہت زیادہ ثواب ہے, ہمیں مسائل سن کر اس کا ثواب بھی نصیب فرما, علم پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرما. لا ہماری اس مسجد کو آباد فرما, آباد کرنے والوں کو آباد فرما. لا ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, ان کی اعلی اولاد کی مغفرت فرما, ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سے لے کر قیامت تک ہماری نسلوں کو دین پر چلا دینا, صراط مستقیم پر چلا دینا, فتنوں سے بچا لینا, گناہوں سے بچا لینا, کفر سے بچا لینا, شرک سے بچا لینا, کبائر سے بچا لینا, مرتد ہونے سے بچا لینا, الہ العالمین ہر قسم کے فتنوں سے بچا لینا. اے اللہ ہماری نسلوں میں اولیاء کاملین پیدا فرما, حافظ قرآن پیدا فرما, عالم دین پیدا فرما, عالم قرآن پیدا فرما, الہ العالمین داعی قرآن پیدا فرما, ناشر قرآن پیدا فرما, عاشق قرآن پیدا فرما. اے اللہ جو بھی بیمار ہو اس مجمع میں, گھروں میں, जहां कहीं लोग सुन रहे हैं, जो भी बीमार हो सबको शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा, हमारे शियूख की मगफिरत फरमा, हमारे असातिज़ाए किराम की मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे तलबा की मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह जहां जहां जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है उन तमाम की मगफिरत फरमा, जिन जिन से हमने पढ़ा है उन तमाम की मगफिरत फरमा, हमारे मुहसिनीन की मगफिरत फरमा, हम पर एहसान करने वालों की मगफिरत फरमा, हमसे मोहब्बत रखने वालों की मगफिरत फरमा। इलाहुल आलमीन तू तेरी शान शान उन्हें बदला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ये कुरान और हदीस की वजह से हमसे मोहब्बत रखते हैं तो उनकी औलाद में भी उलमा और हुफाज पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन जितने लोग जहां कहीं जिन्होंने दुआ के लिए कहा है कहने की तमन्ना करते हैं, ऐ अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा, सबके जायज मकासिद पूरे फरमा। अल्लाह अपने फजल व करम से, अपने रहम व करम से, ऐ अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा, अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा, हमें नफ्स व शैतान के हवाले न फरमा, नफ्स व शैतान के हवाले न फरमा, हमें अपना बना ले, हमें अपना बना ले, हमें अपने बना ले, हमें गैरों के हवाले न फरमा, हमें गैरों के हवाले न फरमा। ऐ अल्लाह फलस्तीन गजा के मुसलमानों की मदद फरमा, नुसरत फरमा, नुसरत फरमा, नुसरत फरमा। तू खिला सकता है, तू पिला सकता है, तू कपड़े दे सकता है, बेमौसम फ्रूट दे सकता है, बेमौसम खिला सकता है, तेरे तू अलीम बिदाति सुदूर है, तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू कुदरत तू कादिर मुतलक है। ऐ अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा, गैब से मदद फरमा। दुनिया ने हाथ उठा लिया लेकिन तेरा हाथ तो वसी है, तेरा खजाना वसी है। अल्लाह तेरे खजानों में से उन्हें खाना इफ्तार में सहरी में नसीब फरमा, उनकी मदद फरमा। अल्लाह अपने फजल व करम से, रहम व करम से हमारी दुआओं को अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और मुखलिसीन की आमीन के साथ हमारी आमीन को मिलाकर हमारी दुआ और तौबा को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद वाली वसल्लम अजमईन बिरहमतिक।